రామ 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 హరే హరే. అంతర్రాష్ట్రీయ కృష్ణ భావన అమృత్ సంఘ హరే కృష్ణ హరే రామ సంస్థ కీ ఓర్ సే హమ్ ఆప్ సబ్ మోరిషస్ వాసియో కా స్వాగత్ కర్తే హై ఔర్ విశేష రూప్ సే హమారే బహుత్ సహయోగి సాథీ ఇస్కాన్ కే 40వ సాల్ సే శ్రీమాన్ అనిల్ జీ బేచూ ఔర్ ఉన్కే సాథ్ ఆయే హువే సారే జో ఉన్కే మిత్ర బంధు హై ఉన్కా ధన్యవాద్ కర్తే హై ఔర్ హమారే అప్నే మిత్ర సుదామలాల్ జీ సుదామలాల్ జీ పధారే హై ఉన్కా భీ స్వాగత్ కర్తే హై ఔర్ ఆప్ సబ్కో జన్మాష్టమి కీ బధాయి దేతే హై. భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి కీ. అబ్ ఏక్ బాత్ ఆప్సే కర్తే హై, ఆప్కే ఫోర్త్ జనరేషన్ యహాన్ ఆయీ థీ నా, ఆప్నే దేఖా థా ఉస్కో, జో భారత్ సే చార్ పీఢీ పహలే ఆప్కే పూర్వజ యహాన్ ఆయే థే, ఆప్కో ఉస్నే ఆప్నే దేఖా థా ఉస్కో? నహీ దేఖా? ఆప్కో మాలూమ్ హై ఆయే థే? ఉన్కా ఫోటో హై ఆప్కే ఘర్ మే, వో మ్యూజియం మే భీ ఫోటో పడా హై. అచ్చా, అవి ఆప్కో పతా లగానా పడే కి ఆప్కే పూర్వజ ఆయే థే, కౌన్ ఆయా థా, కహాన్ సే ఆయా థా? తో ఇందిరా గాంధీ జో ఇన్స్టిట్యూట్ ఉస్మే సబ్కే నామ్ లిఖి హై కి నహీ లిఖి? లిఖి హై నా? ఆప్ ఉస్కో మాన్తే హో కి ఉస్మే జో నామ్ లిఖి హై వో సచ్ హై? కిస్నే లిఖి హై వో నామ్? బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నే. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నే హమారే దాదాఓ కే నామ్ లిఖే. హమ్ మాన్తే హై కి వో హమారే దాదా థే ఔర్ యహాన్ ఆయే థే. యే సచ్ హై? तो फिर मैं कहता हूं व्यास देव ने भागवत में लिखा है कि कृष्ण हमारा पिता है, यहां आया था, ये क्यों नहीं मानते? अरे वो भी तो किताब में लिखा है, आपने देखा तो नहीं था आपके दादा को? मानते हो ना? तो फिर इसको मानना पड़ेगा, ये भी तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आए थे यहां, जैसे आपके बड़े आए थे ऐसे भगवान आए थे. ये बहुत सरल बात है. और दूसरी बात आपसे कर लूं, यहां सब लोगों का जन्म तो होता है ना मॉरिशस में, पैदा होते हैं बच्चे यहां? हां होते हैं ना? तो आप बच्चे पैदा कर सकते हो, इंसान जन्म ले सकता है, ये सब मानते हो? तो क्या भगवान तुमसे भी कमजोर है, वो जन्म नहीं ले सकता? क्या वो तुमसे बहुत कमजोर है, वो जन्म नहीं ले सकता? ये भगवान जन्म क्यों नहीं ले सकता जब हम ले सकते हैं? तो क्या हमसे भी कमजोर है? ऐसे तो हम यह सिद्ध करते हैं कि भगवान हमसे भी बहुत दुर्बल है, कमजोर है. अरे हम सबको जो पैदा कर सकता है उसकी इच्छा हो पैदा हो रही, तो कौन रोक सकता है उसको? कोई रोक सकता है उसको? लेकिन वो जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है. सिर्फ तब जन्म लेते हैं जब कोई उसको बुलाता है. बुलाने वाला कोई होगा तब भगवान आएगा. वैसे आपके घरों में कोई आया है क्या बगैर बुलाए? इतने सारे आपके घर है, कोई आपके घर आया बगैर बुलाए? आप बुलाओगे तब आएगा ना कोई. तो भगवान को जब कोई बुलाने वाला होता है तब भगवान आता है. भगवान को आने के लिए बुलाने वाला चाहिए, कोई प्रेमी भक्त चाहिए, तब भगवान इस धरती के ऊपर आते हैं. वैसे ये धरती भगवान की खेती है, ये भगवान की खेती है, फील्ड है. जैसे खेत में खेत का मालिक जाता है और कभी किसी पौधे को काटता है और कभी किसी को आरोपण करता है, ऐसे भगवान भी आते हैं, किसी को काटते हैं और किसी को जमाते हैं. उनका खेत है, मालिक है, जैसे चाहे वैसे करे. और भगवत गीता में तो पूरा अध्याय है क्षेत्र क्षेत्र के योग. तो दो बातें आपसे हमने कही कि भगवान अवतार जन्म ले सकता है, है अजन्मा. हमने जन्म लिया किसी को पता है? आपने अपने बच्चों का जन्म अपने घर में मनाया? कोई और आया क्या? चार पांच अपने रिश्तेदार आए ना? ये कृष्ण का जन्म पूरी दुनिया मना रही है, भारत के गांव गांव में हो रहा है, अमेरिका अफ्रीका में हो रहा है, प्रभुपाद की कृपा से आज रशिया में हो रहा है. कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा नगर नहीं जहां जन्म नहीं मनाया जाए. क्यों? अरे सबका पिता होते हुए एक दिन बच्चा बन जाता है. चलो क्यों बनता है भगवान बच्चा, क्यों छोटा भगवान बनता है, ये भी सुन लीजिए. सब जगह है भगवान। हाँ भाई सब जगह है भगवान, पानी धरती में सब जगह है कि नहीं है? जहां ड्रिल करोगे तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपको प्यास लगी है, निकालो पानी पियो। धरती के अंदर से पानी पी सकते हो निकाल के? पानी सब जगह है, लेकिन जहां पाइप डाल के नल लगाया होगा वहां से प्यास बुझेगी, ये सच है कि नहीं है? तो भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान ने जहां उसको बिठा दिया है मंदिर में, वहां पाइप लगा के नल लगाया, जाओ प्यास बुझाओ, जाओ प्यास बुझाओ। सब जगह से पानी नहीं मिलेगा, पड़ा है नीचे, निकलेगा नहीं, किसी ने निकाला होगा तब पी सकते हो। सब जगह है लेकिन प्रकट किसने किया? भक्तों ने प्रकट किया। और फिर भगवान सब जगह है तो ये सामने पीछे हमारे बहुत सुंदर राधा कृष्ण का श्री विग्रह है, ये भगवान है कि नहीं है? नहीं, ये तो मूर्ति है। तो भगवान सब जगह है? हाँ सब जगह है। अरे ऐसे तो हिरण्यकश्यप ने भी कहा था कि तेरा भगवान कहाँ है प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा सब जगह है। और भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते, भगवान कह रहे हैं कि अब हिरण्यकश्यप कहां उंगली उठाए, वहां मैं जाके बैठ जाऊं ताकि भक्त की बात सच हो जाए। हिरण्यकश्यप का इस खंभे में तेरा भगवान? भगवान एकदम खंभे के अंदर घुस गए। प्रहलाद ने कहा हां मैं देख रहा हूं अंदर है, देखता हूं तुम्हारे भगवान को। मारा खंभे को चोट और खंभे से नरसिंहदेव निकला, आज भी उसकी दुनिया पूजा करती है। तो भगवान सब जगह है, खंभे में भी तो है। जब खंभे में है तो सामने जो पीछे राधा कृष्ण की मूर्ति है वो भगवान क्यों नहीं है? खंभे में भगवान हो सकता है तो क्या मूर्ति में भगवान नहीं है क्या? यह कोई अच्छा लॉजिक है? सब जगह है मूर्ति को छोड़ के, ऐसा लॉजिक है क्या? अब आइए एक और बात करते हैं आपसे। जितने अवतार आते हैं उसको प्रार्थना करने के लिए पृथ्वी जाती है। पृथ्वी हमारी मां है, मां बच्चों का दुख देख नहीं सकती है, तो मां पृथ्वी का एक रूप है। धरती जो आप देखते हैं, पत्थर है, पहाड़ है, समुन्द्र है, इसको पृथ्वी का आदि भौतिक रूप कहते हैं। आदि देविक रूप में पृथ्वी गाय है, देवता के रूप में पृथ्वी गाय है, और गाय सहनशील होती है और सबको दूध देती है, सबका पालन पोषण करती है। पृथ्वी सबको अनाज पैदा करके दे रही है, हम सब जो खा रहे हैं पृथ्वी से निकल रहा है। जैसे मां बच्चे को दूध देती है, ये पृथ्वी। आज मैं पूछता हूं, दुनिया इतनी प्रगति की है, चांद पे आपका सैटेलाइट जाता है, लेकिन एक दाना चावल का किसी ने बनाया आज तक? एक दाना चावल का कोई मशीन में नहीं बना है। अरे ऐसी मशीन भी आज तक कोई विज्ञानी नहीं बना पाया, ये घास खिलाओ और दूध निकले, है कोई ऐसी मशीन? हाँ, खिलाओ गाय को घास और सुबह निकालो दूध, आज तुम्हारे विज्ञान ने बनाया क्या है? चावल धरती से निकलता है, गेहूं धरती से निकलता है, दाल मूंग धरती से निकलता है, और भगवान भगवत गीता में कहते अनाद भवती भूतानी परजन्याद अन्न संभव। अरे सब अन्न खाओगे तब जियोगे, और अन्न धरती से पैदा होगा, और धरती में बरसात होगी तब अन्न पैदा होगा, और बरसात बरसानी च निग्रहानी च, मेरी इच्छा बरसात करो, मेरी इच्छा नहीं करो। तो भगवत गीता का शिक्षा आज भी उतना ही जरूरी है। आज भी अनाज खाते कुछ और खाते? कुछ लोग कहते नहीं हम अनाज क्यों खाएंगे, हम तो बकरी मुर्गा खाते। हाँ बहुत अच्छा, तुम्हारी बकरी मुर्गा क्या खाती है पता करो? बकरी क्या खाती है? घास खाती है ना, दाना खाता है मुर्गा ना। अरे शेर खाओ तो पता लगे तुम्हारा, क्योंकि शेर मांस खाता है। तो फर्स्ट हैंड तुम मांस खाते हो, सेकंड हैंड मांस खाते हो, घास से बना हुआ मांस खाते हो। हम डायरेक्ट घास, हम डायरेक्ट अनाज खाते हैं, सेकंड हैंड घास खाते हो। मान लो मांस खाने वाले, जैसे यहां प्राय सेकंड हैंड गाड़ियां सब रिकंडीशन आती है ना, जैसे सब रिकंडीशन मांस खा रहे हैं, और सारे पशु वो खा रहे हैं जो बेचारे घास खाते हैं। मैं तो कल कह दिया था, मेरे को मजा नहीं आया। पिताजी का देहांत होता है, अग्नि संस्कार करते हैं, उसकी हड्डियां घर में नहीं लाते हैं, डर लगता है। बाप घर ने बनाया, घर बाप ने बनाया, उसकी हड्डी शमशान में घर में नहीं आएगी, मंदिर में रख में आओ। भगवान कोई बाप मेरा भूत न बन जाए, घर में ना आ जाए। अपने बाप की हड्डी घर में नहीं लाते हैं, सच है कि झूठ है? और बकरे की और मुर्गे की हड्डी भाव फ्रिज में पहुंचते हो, वो क्या बाप से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा? हाँ, ये हो क्या क्या है समाज को? हम आपसे सीधी बात करते हैं, भगवान क्या कह के लिए आते हैं? बहुत अच्छा, अनिल जी कह रहे थे धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं भगवान, बहुत सत्य है। और सारे अवतार भगवान के क्षीरोदक्षायी विष्णु से आते हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक्षायी विष्णु से होती है, वो दूसरा है। और वो विष्णु जिस लोक में सोता है, वो तीसरे विष्णु कारुण दक्षाई से निकलते हैं। ये तीन विष्णु के रूप सृष्टि के लिए हैं। क्षीरोदक्षाई परमात्मा के रूप के समय सबके हृदय में है, गर्भोदक्षाई एक लोक के अंदर ब्रह्मा जी को और 14 लोकों को बनाता है, हर एक लोक सांस में निकलता है कारुण दक्षाई विष्णु से। सांस लेता है लोक निकलता है, सांस वापस गया लोक समाप्त हो गया, इतना टाइम है हमारे जीवन का। ये तीनों विष्णु बलराम जी का विस्तार है, और बलराम जी श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार है। भगवान नराकार है, गॉड हैज मैन मेड द मैन ऑन हिज ओन इमेज। भगवान नराकार है, भगवान निर्गुण है का मतलब है कोई प्रकृति के तीन गुणों का भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। भागवत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, पहले स्कंद में ही, अर्जुन का पोता अभिमन्यु का बेटा, भगवान श्री कृष्ण का भांजा, भांजे अभिमन्यु का बेटा परीक्षित दिग्विजय के ऊपर निकला है। एक जगह देखता है दुबली पतली गाय और एक पांव के ऊपर खड़ा हुआ बैल सफेद, एक आदमी राजा के कपड़े पहने हुए है, हाथ में डंडा उठाया है और दोनों को गाय को और बैल को मार रहा है। महाराज परीक्षण ने तलवार निकाल के कहा, ऐसा अपराधी कौन हो सकता है मेरे देश में गाय की हत्या करे? गाय की ओर देखा, बैल की ओर देखा, गाय बहुत दुबली थी। गाय ने कहा, आप पहचान लो मैं कौन हूं? अरे आप तो पृथ्वी माता हो, और पृथ्वी के ऊपर रहने वालों को संकट कौन दे रहा है? पृथ्वी का जब भी नाम आए तो पृथ्वी के रहने वालों को गिनना चाहिए। वैसे पृथ्वी का हमने आपको बताया, आदि भौतिक रूप में पत्थर है, पहाड़ है, समुद्र है, आदि देव के रूप में गौ है, आध्यात्मिक रूप में भूदेवी विष्णु पत्नी है, श्री देवी और भूदेवी, भूदेवी विष्णु पत्नी है, ये मां हमारी है और विष्णु की पत्नी है, और सारी दुनिया इसका मालिक बनना चाहती है। ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, ये घर मेरा, ये देश का टुकड़ा मेरा। उस वक्त धरती हंसती है, तुमसे पहले कई ऐसे मालिक बनने का बहुत ढोंग रचाया, सब काल के गाल में चले गए, किसी का नाम किसी को याद नहीं है। अरे बेटा बन के धरती की सेवा करोगे तो जिंदा रह जाओगे, नाम रह जाएगा, इसका मालिक बनने गए खत्म हो जाओगे। लक्ष्मी का मालिक बनने वाला भी दुखी हो जाएगा, लक्ष्मी भी विष्णु पत्नी है और दुनिया सब उसका मालिक बनना चाहते हैं। हम एक बात सीधी करते हैं, विष्णु को छोड़ के लक्ष्मी को लाना चाहो, राम को छोड़ के सीता को उठाना चाहो, तो ये रावण का काम हो गया। और हम आपको सीधी एक बात बताएं शास्त्र की, जो लक्ष्मी बगैर नारायण के आती है, जो लक्ष्मी सीता बगैर राम के आती है, वो पता है किसके ऊपर चढ़ के आती है? उसका वाहन उल्लू है, उल्लू, उल्लू समझते हो, आउल। और आउल किसको कहते हैं? दिन को रात, दिन को जो रात, वो आदमी इंसान को अंधा बना देगा। धन का मद बड़े से बड़ा अंध है, और उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है लक्ष्मी, जिसको दिन रात दिखता है और रात दिन दिखता है। और आज तक दुनिया सारी में जो लक्ष्मी उल्लू के ऊपर आई है, इसने सारी दुनिया को रात को जगना सिखा दिया। रात को सारी रात जागते हैं उल्लू की तरह और दिन को सोए हुए होते। ये इस लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रताप है। जो लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी, सीता राम के साथ आएगी, गरुड़ के ऊपर चढ़ के आएगी, और गरुड़ के पंखों से वेद की वाणी निकलती है, वेद गरुड़ के पंख से। इसका मतलब धार्मिक तरीके से जो धन आता है वो आदमी को धार्मिक कानून में लगाता है, और जो धन भगवान से बगैर आएगा, वो लक्ष्मी चंचल भी है, स्थिर नहीं है। तो धर्म की बात कर रहे थे, धरती गाय के रूप में थर थर कांप रही थी और पीछे वो खड़ा हुआ राजा के रूप में काला व्यक्ति उसको मार रहा था और बैल को पूछा, तुम कौन हो, बोलो पहचान लो मैं कौन हूं। अरे तुम धर्म हो, तुम धर्म हो, तुम्हारी रक्षा के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, तेरे तीन तीन पांव क्यों टूटे हुए हैं। महाराज परीक्षित ने जैसे निकाली तलवार, वो आदमी डर के बोला, मैं कलयुग हूं महाराज, मेरा समय शुरू हो गया है, मैं कलयुग हूं, मेरे को रहने के लिए अब कोई जगह चाहिए। बोले तुम क्या समझते हो, महाभगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं है धरती के ऊपर, इसलिए तुम गौ के ऊपर पृथ्वी के रहने वालों को सता रहे हो और धर्म की टांग तोड़ रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, मेरे को शरणागति दो, मुझे जीवन दान दे दो। और ये क्षत्रिय का धर्म है, एक बार कोई जीवन दान मांगे उसको जीवन दान दे देना चाहिए। जिंदा छोड़ दिया, लेकिन हाथ जोड़ के कहा कि मैं रहूं कहां, मेरे को रहने के लिए कोई जगह तो दो, मेरा समय शुरू हो गया कलयुग ने, बोला हाँ तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो तुम वहां जाके रहो जहां शराब पीते हैं लोग, सुरापान, जहां लोग शराब पीते हैं, तुम जाके वहां अपना आसन बनाओ, तुम वहां जाके रहो। परीक्षित बोला, यहां तो कोई शराब नहीं पीता है, और मैंने सुना मॉरिशस के जो आपके पूर्वज आए थे भारतवर्ष से, बेचारे हो सकता है एक कपड़े में आए हो सकता है भूखे आए हो, पेट अंदर पड़ा हो, पैसे कमाने आए हो, लेकिन धन से, धर्म के धन से उनका दिल भरा हुआ था। उन्होंने गली गली के अंदर बहुत सुंदर गांव गांव में मंदिर बनाया है, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की है। आज उस धर्म को हजारों मील दूर आप भारत से आध्यात्मिकता को यहाँ देख रहे हैं, लेकिन दुख से कहना पड़ता है एक गांव में जितने मंदिर है उससे ज्यादा शराब खाने। जहां एक गांव में एक शिवाला है और शिवाले वाला लिख के देता है यहां भले एक शराब का दुकान खोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हमने कल भी एक सत्संग में हाथ जोड़ के कहा था, आपके बुजुर्गों ने बड़ी कृपा के इतने सुंदर मंदिर बनाए हैं, लेकिन साधु शिक्षा देने वाला किसी मंदिर में नहीं दिखता। घंटी बजाने वाला पंडित दिखता है, ओझा दिखता है, भूत दिखाने वाला, भूत भगाने वाला दिखता है। अरे भूत कोई और नहीं है, वो ओझा ही भूत है। बंगाली में कहावत है कि तुम जो मस्टर सीड पढ़ के डाल रहे हो भूत उतारने के लिए, भूत मस्टर सीड में बैठ जाएगा तो भूत ही भूत लगेगा, और क्या होगा। तो कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, सारे मंदिर हमारे ऐसे हो गए हैं जैसे अस्पताल जिसके अंदर एक्सरे भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है, लेकिन डॉक्टर छुट्टी पे है। अब बताओ वहां कोई मरीज जाएगा ठीक होगा। शिक्षा कहां है, शिक्षा नहीं है। मैं सच बोलता हूं, छोटे बच्चों के ब्रह्मचारी का शिक्षा कौन दे रहा है। मैं एक डॉक्टर के पास बैठा था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में, डॉक्टर बात मुझे कर रहा है और मैं, मुझे आश्चर्य लगता है, बोला हमको किसी ने यह शिक्षा नहीं दी। वो साइंट वैज्ञानिक बात कर रहा है, कोई समझे तो ना समझे, एक स्पर्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें से एक बल्ब जल सकता है, वो कह रहा था। और जितना स्पर्म एक बार लास्ट करता है युद्ध, उससे एक रॉकेट चांद पे जा सकता है। इतनी सारी एनर्जी हमारा नौजवान सत्यानाश कर रहा है, क्यों धर्म की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है, कहां ब्रह्मचारी की शिक्षा देने वाला रह गया। ये शिक्षा दी जाती थी और हमने कहा ये इंस्टीट्यूट इस्कान का काम शिक्षा देना है। प्रभुपाद ने इस्कान बनाया है एज ए स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट टू गिव द एजुकेशन अबाउट द सोल एंड सुपर सोल, भगवान आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में शिक्षा देना, और आध्यात्मिक शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट। आध्यात्मिक शिक्षा मुफ्त में दी जाती है, आध्यात्मिक शिक्षा देने के साथ प्रसाद की व्यवस्था भी होती है। आप देखिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, और यहां जो सत्संग हो रहा है ये एजुकेशन है, ये क्लास है, और ये भी फ्री है। और भारतवर्ष की और आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है, शिक्षा बच्चों को फ्री में देनी चाहिए, खाना भी देना चाहिए, किताब भी देना चाहिए, कपड़े भी देना चाहिए, गुरु का जवाबदारी है। और राज देता था गुरु को, और गुरु ये शिक्षा देता था, तब बच्चे। मैं आपसे फिर ये प्रश्न पूछता हूं, आपके बच्चे आपके पांव पड़ते हैं, आपके बच्चे सुबह आपकी आज्ञा लेके जाते हैं काम करने, नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं जाते हैं, कहां खराबी हो गई, शिक्षा नहीं है। जब हमारे वेद के मंत्रों में लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तेरी माँ तेरे चरणों में, उसके स्वर्ग माँ के चरणों में जाओ, उसकी सेवा करो। मुझे हंसते हुए रात्रि कहा था, आ भी कहता हूँ, एक सास ने बहू को कह दिया सर दुख रहा है दबा दो, बोला अभी टाइम नहीं है, तेरा गला दुखे तब मुझे बुला लेना। अब ये स्थिति धर्म की है। एक स्कूल के अंदर इन्विजिलेटर गया इंस्पेक्टर, उसे जाके एक प्रश्न पूछा, बताओ बच्चे महाराज जनक की दरबार में भगवान शंकर के भारी धनुष को किसने तोड़ा। सब बच्चे डर रहे थे, ऐसे डर, एक तुम उठो बता, बोला सर मैंने नहीं तोड़ा। टीचर से पूछता है इन्विजिलेटर इंस्पेक्टर, बोला ये बच्चा क्या कह रहा है, इसको ये शिक्षा है। टीचर कहता है ये अच्छा लड़का है, इसने नहीं तोड़ा है सर। हेडमास्टर से जाके पूछा कि बच्चे से पूछा धनुष किसने तोड़ा जनक की दरबार में भगवान शंकर का, वो कहता है मैंने नहीं तोड़ा। टीचर कहता है इसने नहीं तोड़ा। हेडमास्टर कहते हैं बच्चे शरारती हुए कभी खिड़की तोड़ते हैं, कभी दरवाजा तोड़ते हैं, तोड़ दिया होगा माफ कर दीजिए। अब ये धर्म की हाल है। अब हमारे बच्चों को ये धर्म का, ये दादी दादा सिखाते थे राम कथा, दादी दादा को हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना दिया, यूज एंड थ्रो, प्लेट में खाओ फेंक दो, दादी दादा ने सेवा की घर से निकाल दो, अब कौन सिखाए ये। हमने बड़े बुजुर्गों को घर से निकाल दिया, ये धर्म के न होने के कारण। चरित्रहीनता आध्यात्मिकता के अभाव में आती है, स्पिरिचुअलिटी की डेफिशिएंसी वजह से मॉरलिटी का हास होता है, गिरती है। नो स्पिरिचुअलिटी नो मॉरलिटी, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो धर्म एक जगह शराब के अंदर रहने को दी कलयुग को, बोला दूसरा स्थान तो महाराज ये जगह ठीक नहीं है, बोला जहां पशु हत्या होती हो, एनिमल स्लॉटर होता हो, जहां मांस खाया जाता हो, वहां जाके तुम अपना जगह बनाओ। महाराज आपके यहां तो लोग सब हलवा पूरी खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, मांस तो कोई नहीं खाता है। वो तो दूसरा है कि यहां फ्रेंच लोग आए थे तो उनको तो खेती करने नहीं आती, और डोडू सारे खा गए, एक भी नहीं छोड़ा, और भूखे मरे, तब हमको लाए वहां से कि तुम कुछ खेती करो हम खाएं, भूखे मर जाते। भाई सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, मैं मिडिल ईस्ट में जाके देखता हूं, वो हमारे बाप दादा वहां से चावल लाते थे तब वो खाते थे, हीरे मोती निकालते थे समंदर से, लेकिन मोती खाने से पेट तो नहीं भरता था, तो खाना उगाना ही नहीं आता था, तो खाएंगे कहां से, मार के खा लिया सब। आप ये जगह भी नहीं मिली कलयुग को, बोला कोई तीसरा स्थान दो। तब कलयुग को परीक्षित ने कहा विवाह से बाहर जहां भी स्त्री और पुरुष में इलिसिट रिलेशनशिप हो वहां तुम जाके अपना आस्थान बना लो। बोला महाराज भारत का विवाह तो इतना लंबा चौड़ा 7 दिन का है, एक बार शादी की फिर तोड़ के दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकता है, यहां ये झमेला नहीं है। एक हमारा अमेरिकन दोस्त था, हम शादी में ले गए, वो 7 दिन शादी के अंदर जो फेरा फेरी देखा उसने, बोला ये शादी करने के बाद आदमी दोबारा शादी करने का सोचेगा नहीं, इसलिए आपके लोग तोड़ते नहीं है। हम तो जाके ऐसे करते ये पसंद है, ये पसंद है, यस यस, और कल बोलेंगे नो तो नो। इतना लंबा हमारी प्रक्रिया शादी की है कि एक बार होगी तो बहुत। तो कलयुग को यह जगह भी नहीं मिली। चौथा स्थान दिया कलयुग को रहने के लिए जहां गैम्बलिंग होती है, जुआ होती है, लोटो, लोटो क्या लिखा है, हाँ जगह नहीं, जगह नहीं, कलयुग परेशान हो गया। परीक्षित महाराज ने उसको ऐसा स्थान दिया, कोई नहीं मिला। और आजकल पूरी दुनिया के अंदर ये 4 जगहें आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी, सब जगह मिलेगी, सब जगह मिलेगी। इसका मतलब कलयुग ने अपने पांव चारों ओर फैला दी, जगह जगह के आपके, जगह जगह के ऊपर आपको इंटॉक्सिकेशन मिलेगी, शराब खाने मिलेंगे, जुआ खाने मिलेंगे, ब्रोथल मिलेंगे, ये सब जगह खुले मिल गए हैं दुनिया पूरी में। कलयुग ने अपनी राजधानी जमा ली, कोई नहीं रोक सकता है कलयुग को। भगवान ये धर्म स्थापन करने आए थे। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, धर्म के 4 पिलर होते हैं। धर्म का पहला पिलर है दया, मर्सी, दूसरा पिलर है तपस्या, ऑस्टेरिटी, तीसरा पिलर है सत्य, ट्रूथफुलनेस, और चौथा पिलर है प्योरिटी, पवित्रता। सत्य का नाश होता है जुआ करने से, दया का ह्रास होता है पशु हत्या करने से, एनिमल किलिंग और मीट ईटिंग, आदमी का दया समाप्त हो गया। पवित्रता जाती है परिस्त्री पर पुरुष के संग करने से, और तपस्या जाती है नशा करने से। धर्म तो भगवान ये स्थापित करने आया था कि लोग दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य, यह धर्म है। और हमने धर्म की धज्जियां उड़ा दी। घर घर के अंदर ये चार चीजों मिलेंगी आपको। दुख से कहना पड़ता है, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के अंदर भी कॉलेज के बाहर मां बाप कभी जाके देखे तो हमको शर्म आती है, पर हमें बच्चे नहीं जाते हैं, बाहर जाके बैठे हुए लवला लवली खेला खेली करते रहते हैं। सब कॉलेजों के बाहर का ये हाल है, और पूरे दुनिया का मैं बता रहा हूं, एक जगह का नहीं बता रहा हूं। एक प्रोफेसर हमको मिले, वो वाइस चांसलर, बोला मैं अमेरिका गया था मेरे किसी कॉन्फ्रेंस में, मैंने बोला कहां क्या देखा, बोला बाहर जाके करूं क्या, बाहर देखने जैसा माहौल ही नहीं है, इससे तो पशु अच्छे हैं। अगर आदमी कम कपड़े पहनने से अच्छा लगता तो गधा घोड़ा कुछ पहनता ही नहीं है, वो अच्छे होते ना, लोगों ने कपड़े पहनना ही छोड़ दिए। तो एनिमल जैसा जीवन सबका व्यतीत हो रहा है, ये कोई बात है? ये धर्म भगवान स्थापित करने के लिए आए थे। तो कलयुग को कोई नहीं रोक सकता। कलयुग के जो मोमेंटम उसने पकड़ लिया है, जो उसकी गति अब आगे बढ़ रही है, कोई नहीं रोक सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दें, बरसात को कोई रोक सकता है? बाहर आप भी लापली भी नहीं आए, लापली बरसात आए, कोई रोक सकता है? यहां गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, अमेरिका को बुलाओ नहीं रोक सकता है, लेकिन छाता तो खरीद सकते हो ना, एक अम्ब्रेला तो खरीद सकते हो ना। बरसात नहीं रोक सकते, अम्ब्रेला तो खरीद सकते हो ना, अपना सर तो बचा लोगे ना। तो कलयुग को नहीं रोक सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया प्रभुपाद जी ने, अभय चरणार्थ भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद इस्कान के संस्थापक आचार्य ने, न्यूयॉर्क कलयुग की राजधानी, जहां कलयुग का बोलबाला है चारों ओर, जहां हिप्पी शराब तो उनके लिए कुछ नहीं था, वो पानी की जगह पीते थे, वो तो हशीश भी कुछ नहीं था, LCD लेते थे, हीरोइन के कुछ जो नहीं दुनिया में किसी ने देखा है वो भी पीते थे, और लड़के लड़की गले में हाथ मिला के आते थे। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया प्रभुपाद ने भगवद गीता के संदेश का, भगवान के नाम के छाते का, हर एक के हाथ में भगवान के नाम का छाता पकड़ा दिया, और एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट को लिखना पड़ा, स्वामी जी हैज मेड हिप्पीज हैप्पी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये अमेरिका के न्यूज़पेपर में लिखा था कि स्वामी जी हैज मेड हिप्पीज हैप्पी। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि हर बाप मां चाहता है कि मेरा बच्चा नशा ना करे, मेरा बच्चा बुरा ना बने, ये हर मां बाप चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर सब ये चाहते हैं तो उसका रास्ता बहुत सरल, जन्माष्टमी के दिन सीख लो। कलयुग को रोकना मुश्किल है, बरसात को रोकना मुश्किल है, छाता सब गरीब भी खरीद सकता है। तो भगवान का नाम के रूप में कलयुग में भगवान ने अवतार लिया है, और गीता के अंदर भगवान आज भी आपसे बात करने को तैयार है, आज भी ये आपके साथ जाने को तैयार है। और भगवान ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जब यहां आए। भगवद गीता में संदेश क्या है भगवान का? सीधा सीधा संदेश, भाव मत भक्तो, ये श्लोक दो बार आया है, मन मना भाव मत भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु, ये चार सूत्री प्रोग्राम है, 4-point प्रोग्राम है भगवान का, भगवद गीता का, मेरे भक्त बनो। अर्जुन ने पूछा नहीं बनेंगे तो क्या करोगे? बोला देखना है क्या करूंगा, तो आज देख लो मैं एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, बोला क्या एक्सपेरिमेंट? बोला महाभारत का युद्ध, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है दुनिया के लिए, फ्यूचर में देखने के लिए। बोला इसमें क्या दिखाओगे? बोला जो मेरा भक्त होगा बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। और बचा कौन? 5 पांडव बचा, एक सात्यकी बचा जो अर्जुन के साथ था, उसका शिष्य था, एक कृपाचार्य बचा जो गुरु था, एक अश्वस्थामा बचा चरणजीवी था, एक कृतवर्मा बचा, बाकी 60 मिलियन बिलियन पीपल राम नाम सत हो गया। ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है जन्माष्टमी, तो ये संदेश ले जाओ, जो भक्त बनेगा भगवान उसके लिए कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। प्रहलाद छोटे बच्चे की रक्षा करने के लिए मैं नरसिंह बन के आ सकता हूँ, 5 वर्ष का छोटा मुझे अगर ध्रुव बुलाता है तो मैं सामने आगे खड़ा हो जाता हूं, भक्त बनो और मेरी सुरक्षा की गारंटी ले लो। ये वारंटी नहीं, ये गारंटी है, गीता आपके लिए गारंटी है। हमने एक चीज पूछी सब लोगों से, पूरी दुनिया में सबके पास मोबाइल है, बोला हाँ है। हमने बोला जब खरीदते हो तो इसके साथ किताब मिलता है, बोला हाँ एक बहुत अच्छा कैटलॉग मिलता है कलर। मैंने बोला कभी खोल के पढ़ा है, बोला नहीं। ये सच्चा झूठ है? आपने मोबाइल का किताब कभी पढ़ा है? मिला था कि नहीं मिला था? लेकिन सबने संभाल के रखा है, रखा है ना, क्यों? उसमें वारंटी। ऐसे ये दुनिया में इंसान बना तो उसके साथ ये कैटलॉग साथ आया, लेकिन हमारी आदत इतनी खराब है कि पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन वारंटी है मरेगा तब पढ़ेंगे। अरे गीते जी पढ़ो, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे अनिल जी के, गांधी जी कहता ये मेरी मां है, मैं मुश्किल में पढ़ता हूं तो मेरे को प्रकाश देती है। पूरे विश्व के लोगों ने इस गीता से ज्ञान प्राप्त किया और गांधी रोता था, गांधी जी रोते थे कि क्रिश्चियन बचपन में बाइबल बच्चे को पढ़ाता है, मोहम्मदीन कुरान पढ़ाता है, लेकिन हमारे भारतवासी बच्चों को गीता नहीं पढ़ाते, ये मेरे को बहुत बड़ा दुख है। इस बात के ऊपर गांधी रोया करता था। और हम इसको ऐसे बोलते हैं कि आप आपके बच्चों को पोलियो का ड्राप पिलाने जाते हैं, टीका लगाने अस्पताल जाते हो कि नहीं जाते? क्यों जाते हो? क्यों जाते हैं? इम्यूनाइजेशन करने के लिए, क्योंकि टांग खराब हो जाएगी पोलियो हो गया तो। हम आपसे हाथ जोड़ के पूछते हैं इम्यूनाइजेशन कर लो, पोलियो से टांग नहीं खराब होगी, उसका दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे पास क्या है, दवाई है कोई? अरे ये गीता से इम्यूनाइजेशन बच्चों की कर लो, उसका दिमाग खराब नहीं होगा, और कोई खराब होगा तो भी सुधर जाएगा, ये इम्यूनाइजेशन है। इसलिए पुराने जमाने में बच्चों को ये याद करा देते थे। उसका फायदा पता है क्या होता था? उसका एडवांटेज पता है क्या होता था? आपके मोबाइल में मेमोरी है 500 फोन की, और छठा जब 501 होगा तब अंदर से क्या आएगा? नो स्पेस, यही आएगा ना। तो जिस बच्चे को आपने गीता पढ़ा के याद करा दी ना, उसको कोई कहेगा सिगरेट पिएगा, अंदर से आएगा नो स्पेस मेमोरी फुल, शराब पिएगा मेमोरी फुल। बहुत सिंपल सा फार्मूला, ये लॉजिक है। आप इसको जीवन में एक बार, अरे भारतवासियों को किसने कहा कि तुम गरीब हो, वर्ल्ड बैंक से भिक्षा मांगते हो कि हम गरीब? अरे तुम्हारा धन तो ये है, आपका धन ये है, इसके 5 श्लोक अगर तुमको आते हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, लोग तुम्हारे सर के नीचे आके बैठेंगे और तेरे पांव के ऊपर ऐसे पैसे पटक के चले जाएंगे, तुम्हारे को निर्वाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन तो हमारा ये था, हमने इस धन को भुला दिया, हमारी स्थिति तो ऐसी है। एक गांव के अंदर एक आदमी पुरानी पेटी के ऊपर बैठा था, पुरानी पेटी के ऊपर बैठा था, 4-4 आना 8-8 आना, हाँ 1 रुपया दे दो, 50 सेंट दे दो। एक आदमी ने कहा पेटी तो एंटिक है, यही 50 लाख रुपए की है, इसके ऊपर बैठ के 8 आने का चीज मांग रहा है? बोला ये मेरे दादा की है। अरे खोल तो सही, क्या है अंदर? अंदर खोले तो हीरा मोती पड़ा है, अंदर डायमंड पड़ा है, उसके ऊपर बैठ के 8 आने, रुपया 4 आना, 1 रुपया भिक्षा मांग रहे, ये हमारी हालत है। ये हमारी पेटी में हमारे दादा लाए थे रामायण, हमारी दादा लाए थे भागवत गीता, इसको हमने पेटियों में बंद कर दिया है, और हमारी हालत उस भिखारी की तरह है, ऐसे गलियों में घूम रहे हैं। तो इस जन्माष्टमी गो नंद के घर में आनंद हुआ था, लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट हो जाएगा, उस दिन हमारे जीवन में आनंद हो जाएगा। और कृष्ण इतना दयालु है कि आपके साथ आज भी जाने को तैयार है। ले जाओ कृष्ण को जन्माष्टमी में, अपने साथ ले जाओ, चला चलेगा। अरे वो एक गोपी के साथ एक बन के नाच सकता था तो मिलियन ट्रिलियन लोगों के साथ उतने में होके जा सकता है। He can become as many as you want. आपके साथ जाने को तैयार है, लेकिन आप लेने के लिए आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए। एक श्रद्धा इसकी कीमत है, आदौ श्रद्धा अथ साधु संग, पहले श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा होगी तो भगवान अभी, एक संत ने कहा भगवान चाहिए अभी ले जाओ, सब लोगों ने कहा हाँ चाहिए। बोला किसको चाहिए? सबने कहा मुझको चाहिए। बोला कब चाहिए? बोला अभी चाहिए। उसने पता है क्या कहा? बोला ये पेन लो, ये पेपर लो, जो जो तुमने अपने जीवन में गलत काम किए उनकी लिस्ट बनाओ, जब लास्ट बेईमानी लिख के पूरी करोगे उस वक्त भगवान आके हाथ मिलाएगा। किसी ने नहीं लिखा किसी ने नहीं लिखा। आज भगवान मिलने को तैयार है। वो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे और ये गीता का संदेश, गीता पढ़ने के बगैर बाहर पढ़ा है, देख लो ये गीता का संदेश। इस फोटो में क्या दिखता है? एक रथ दिखता है, रथ, हाँ रथ में घोड़े हैं आगे, और रथ के घोड़ों में लगाम है, रेंस है, और लगाम कृष्ण के हाथ में है और ऊपर अर्जुन बैठा है। यही है ना फोटो? ये गीता का शिक्षा है, ये गीता का सार है, ये गीता का संदेश है। ये जो शरीर है ये रथ है, वेद कहता है शरीर रथ, ये गाड़ी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका लगाम है, बुद्धि इंटेलिजेंस इसका ड्राइवर है, सारथी है, आत्मा इसमें यात्री है। तो इसमें क्या है देखो, लगाम किसके हाथ में है? कृष्ण के। और कृष्ण कहां बैठा है? बुद्धि के स्थान पे। जो अपने जीवन में अपना मन कृष्ण के हाथ में देगा और कृष्ण को बुद्धि में बिठाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सरल, बहुत सरल ये गीता का संदेश है। और यही गीता का बार बार का श्लोक है, मई एव मन आदस्त्व मई बुद्धिम निवेशय, तेरा मन मेरे पास रखो, डिपॉजिट कर लो, क्योंकि ये मन तुम्हारे को भटका देगा, ये मन मेरे हाथ में दे दो, मुझे बुद्धि में बिठा दो और मैं तेरा रथ को दुनिया के साथ भव सागर से पार कर लूंगा। तो भगवत गीता का संदेश, धर्म का संदेश, और धर्म का संदेश अपने धर्म, घर 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 में धर्म आया, धर्म रक्षित रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आपको सबको जन्माष्टमी की बधाई है। श्री प्रभुपाद की कृपा से ये जन्माष्टमी पूरे विश्व में हो रही है, आपके मॉरिशस में, आपके पूर्वज जो धर्म का धन लाए थे उस धन से अपने जीवन को सफल करो। ये भौतिक दुनिया का धन आएगा जाएगा, इसके कुछ की परवाह मत करो, लेकिन इसको मत भूलो, ये चरित्र और हमारी आध्यात्मिकता क्या धरोहर है बड़ों की, इसको संभालो, अपना जीवन सफल करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा राम रामा, हरे हरे। जन्माष्टमी महोत्सव, महोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, मोरे शिष्य भक्त वृंद की, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में